मित्रों, आज की हमारी भागवत पुराण की कथा एकदम अनूठी है। सुनने में पहले तो ये और कथाओं के जैसी ही लगेगी, पर जब इस कथा के संकेत और प्रतीक यानी कि सिंबल्स समझ में आएंगे तो आप एकदम से चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुना रहा हूं जिसने अपने आमोद प्रमोद भोग और विलास में जीवन को नष्ट कर लिया। जी हां, उसका नाम था पुरंजन। पुराने काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पुरंजन। वैसे तो पुरंजन ज्ञानी और दूरदृष्टा था, पर उसका मन उचाट रहता था। अपने इसी विचलित मन के चलते वो किसी अच्छे और सुंदर स्थान की खोज में निकल गया। चलते चलते वो पहुंच गया हिमालय की तराई के एक इलाके में। इतना सुंदर नगर उसने नहीं देखा था। इस नगर के 9 द्वार थे, अद्भुत छटा, सुंदर फूलों से भरे उद्यान, और इस सब को देखने के बाद पुरंजन को दिखी एक अति सुंदर स्त्री। इस सुंदर स्त्री के 10 सेवक थे और 5 फनों वाला एक शेष नाग उसकी रक्षा कर रहा था। उस युवती ने जब रूपवान पुरंजन को देखा तो वो भी उस पर मोहित हो गई। आखिर पुरंजन और उस सुंदर स्त्री ने विवाह कर लिया और पूरे ऐश्वर्य के साथ पुरंजन उस नगर का राजा बनके भोग और विलास में अपना जीवन बिताने लगा। जब सब कुछ अच्छा जा रहा होता है ना दोस्तों, तो कोई चिंतन नहीं होता, बस मस्ती होती है जिसमें सब खोए रहते हैं। पुरंजन और इसी स्त्री की कई संतानें हुई। पुरंजन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था, उसकी हर कही हुई बात को वो मानता। एक दिन पुरंजन एक शिकार पर निकला। समय की सुध खो करके वो बस शिकार ही करता रहा और शिकार करते करते वो बहुत दूर निकल गया। पुरंजन शिकार में कुछ ऐसा मस्त हुआ कि अपनी रानी, नगर, बच्चे सब कुछ भूल गया। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस लौटा तो रानी रूठी हुई थी। उसने अपनी रूठी हुई रानी को मनाया और विश्वास दिलाया कि फिर वो वैसा कभी नहीं करेगा। समय बीतता रहा और समय के साथ आयु भी। पुरंजन के बच्चों के भी बच्चे होने लगे। फिर पुरंजन ने उन सब की शादी और दूसरे कामों में भी अपने आप को व्यस्त किया। ऐसे समय में अचानक से गंधर्व राज चंडवेग ने उनके नगर पर आक्रमण कर दिया और उनकी धन संपत्ति लूटने लगा। इस गंधर्व सेना ने पुरंजन को पकड़ लिया और अपने साथ पाताल लोक लेकर के जाने लगे। पर जाते हुए वो उन सभी स्थानों से गुजरे जिन जगहों पर पुरंजन शिकार के लिए गया था। हर उस जगह से गुजरते हुए पुरंजन को समझ में आ रहा था कि कैसे उसने कितने ही निर्जीव प्राणियों का अंत किया था। उसका नगर जल के खत्म हो चुका था और पुरंजन को गंधर्व सेना अपने साथ पाताल ले गई। पाताल में जाने के बाद पुरंजन का काल की पुत्री जरा के साथ में प्रेम प्रसंग चला। अब जरा के संपर्क में आते ही पुरंजन का बल, कांति और तेजस सब कुछ नष्ट हो गया। पाप तो उसने अनगिनत किए थे, उसके सारे अच्छे कर्म भी नष्ट हो गए और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर उसका दूसरा जन्म हुआ और इस जन्म में पुरंजन एक कन्या के रूप में पैदा हुआ। इस कन्या को इस प्रेजेंट जन्म में बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में पुरंजन के रूप में जो उसने पाप किए थे, उन पापों को भी नष्ट जो करना था। दोस्तों, ये तो कथा थी और इस कथा में बताए गए सिंबल्स क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी ये बातें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, पर सोचने पर उतनी ही सिंपल भी हो जाती हैं। ये कथा पुरंजन की नहीं, आपकी, मेरी, हम सबकी है। धरती पर हर मनुष्य इन्हीं सब अवस्थाओं से गुजरता है। जरा सुनिए और समझिए। सबसे पहले हिमालय में पुरंजन जिस 9 द्वार नगर में पहुंचा था वो थी माया। हमारे भी शरीर में 9 द्वार होते हैं, जिससे हम माया रूपी दुनिया का अनुभव करते हैं। जो सुंदर युवती पुरंजन को मिली थी उसके 10 सेवक थे। ये 10 सेवक असल में 5 कामेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां थीं। जो 5 फनों वाला नाग उस सुंदर युवती की रक्षा कर रहा था वो असल में 5 इंद्रिय विषय थे। और अंत में जब पाताल यानी के जीवन के रसातल में मनुष्य पहुंच जाता है तो उसका संबंध होता है जरा से, यानी कि बुढ़ापे से। बुढ़ापे के आते ही आपका बल, ओजस, तेजस सब कुछ खत्म हो जाता है। सुंदर शरीर जो कि माया है, उसके जाल में फंस के इंद्रियों को भोगते हुए, इंद्रियों के विषय में आनंद उठाते हुए एक लंबा समय बीत जाता है। ऐसा लगता है कि यही तो जीवन का उद्देश्य है। अचानक से जीवन में जब कुछ होता है तो उसके आनंद में और सब कुछ भूल जाते हैं। जब तक जरा यानी कि बुढ़ापा हमको नहीं पकड़ता, ये समझ ही नहीं आता कि जीवन बीता जा रहा है। आपकी लाइफ का पर्पस यदि इस तरह से आनंद उठाना है तो ठीक है, क्योंकि निर्णय तो आपका है ना। पर फिर भी ये जान लीजिए कि आप हमेशा इसी जन्म और मरण के बंधन में रहेंगे। जन्म लेते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे और कर्मों के अनुसार उसके फल भी भोगते रहेंगे। पर अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप कौन हैं, क्यों इस धरती पर आए हैं, कि आपका लक्ष्य भोग या विलास नहीं, उस परमात्मा, उस ईश्वर को समझना है, इस ब्रह्मांड को समझना है, तो आप उसकी ओर काम अवश्य करेंगे। तब आप ईश्वर को याद करते हुए अपने कर्म कर्तव्यों के जैसे करेंगे। हमारी सनातन परंपरा में जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। यदि इस लक्ष्य के अलावा आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, इस दुनिया में फंसे रहेंगे। पुरंजन के जैसे आपका भी मन उचाट ही करता रहेगा। पर यदि मोक्ष को समझकर उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो आपके मन में संतोष होगा। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।